नमस्कार, बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। क्या चीज सत्य है, क्या चीज असत्य है, क्या चीज मिथ्या है, कैसे पता करें क्या चीज सत्य है? आपका अपना अनुभव होगा कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिर्फ बता दिया जाता है कि हाँ, ये सच है, ये झूठ है, इसकी बात पे विश्वास करो, उसकी बात पे मत करो। और लेकिन हमें ये कभी नहीं बताया जाता है कि वो चीज़ सच क्यों है। बहुत कम बार ऐसा अवसर आता है कि हमें अपने अनुभव से वो चीज़ सत्य है या झूठ है वो सिद्ध करने का मौका मिले। ज़्यादातर माता पिता जो कहते हैं वो मान लिया जाता है कि हाँ, वही सत्य है, हमें वैसे ही अपने कर्म करने हैं, अपने अपने कार्य हमें उस हिसाब से करने हैं, और हमारी जो मान्यताएं बन जाती है उस हिसाब से कि हाँ, ऐसा कहा गया है तो यही सच होगा। और स्कूल में भी आप वही एक तरह की पट्टी पढ़ाई जाती है कि जो किताबों में लिखा है वो सत्य है, आपको उसको याद करके वैसा का वैसा जो है परीक्षा में लिखना है, नहीं तो फेल। और आपने वैसा कर दिया जो उन्होंने कहा है तो आप पास। और परीक्षा में पास फेल होना आपके रोजगार से संबंधित है, रोजी रोटी से संबंधित है, तो आपके पास कोई चारा नहीं रह जाता है। व्यवस्था ऐसी बना दी गई है, सामाजिक व्यवस्था, कि जो दूसरे कह रहे हैं आपको मानना ही पड़ता है कि वो सच है। तो ये काम करता है, काफ़ी काम आता है कि जो माँ बाप ने कहा है या शिक्षकों ने कहा है उसमें ज़्यादातर चीज़ें सच भी होती हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, आध्यात्म मार्ग पर जो चल रहा है उसके लिए ये चीज़ें बाधा बन जाती हैं। ये चीज़ें मन में डाल दी गई हैं आप बचपन से, वो ही एक बाधा बन जाती है आपके मार्ग पे। सत्य क्या है फिर? यदि ये जो लोग कहते हैं वो नहीं है तो फिर और क्या है? क्या जो पुस्तकों में लिखा है वो सब सत्य है, या जो गुरु कहते हैं वो सत्य है, शिक्षक कहते हैं वो सत्य है, जो टीवी पे आता है, आपके जो नेता लोग बताते हैं वो सत्य है? और यदि नहीं तो आपको कैसे पता करें कि वो सत्य है या नहीं है? जो भी आध्यात्म मार्ग पर है शिष्य, उनका एक बहुत बड़ा गुण होता है कि उनको सत्य असत्य में भेद तुरंत पता चल जाता है। वो कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, उनको वहीं के वहीं बैठे बैठे सत्य असत्य का भेद पता चल जाता है। ये सिर्फ आध्यात्मिक लोगों में ही पाया जाता है गुण, आम लोगों में नहीं पाया जाता। कि जब तक हमें काम नहीं पड़ता, हम ज़्यादा उसके पीछे नहीं पड़ते क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन हमें कुछ कार्य करना है, कुछ कर्म करना है, तो अनुभव पर जाते हैं। जैसे किसी ने कह दिया ये चीज़ खरीद लो, बहुत अच्छी है, तो यदि वो छोटी मोटी चीज़ है तो खरीद भी लेते हैं। मेरे जान पहचान के मेरे मित्र ने बोला है तो सच ही होगा। लेकिन कोई आपसे कहता है कि ये 50 लाख का फ्लैट है या प्लॉट है, आप खरीद लो, तो नहीं, आपको उसकी परीक्षा करनी पड़ती है, आपको उसके कागज पत्र देखने पड़ते हैं, कौन बेच रहा है, कैसा है, ये सब आपको पक्का करना पड़ता है। और उसके लिए आपको दूसरे तरीके जो है काम में लाने पड़ते हैं। यानी कि जो हमने पिछले बैठक में जाने प्रमाण या अनुमान, आपको प्रूफ उसका चाहिए रहता है। यदि बहुत लोग कह रहे हैं तो उसी को सच मान लिया जाता है। 1000 लोग हैं, उसमें से 900 लोग कुछ बात कह रहे हैं तो उसको सच मान लिया जाता है। आपके नेता लोग भी यही कर रहे हैं, क्योंकि वो भारी आदमी है, बहुत सब लोग मानते हैं उसको, तो हर शब्द जो है नेता का आपके पत्थर की लकीर हो जाता है कि इस नेता ने कहा तो सच होगा। और उसके जो विरोधी है उनको अपने विरोधी नेता की बात सच लगती है। तो सुनी सुनाई बातें जो है सच मान ली जाती है। उनके पास कोई उपाय नहीं रहता कि क्या सच है क्या झूठ है। ये सिर्फ गाँव के लोग या अनपढ़ गंवार लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षित लोग हैं जो कॉलेज की डिग्री लेके बैठे हैं, वो उनके पास भी कोई तरीका नहीं होता क्या सच है क्या गलत है जानने का। तो टीवी में न्यूज़ आती है कि वैज्ञानिकों ने ऐसा ऐसा कहा है, आंख बंद करके उस पर विश्वास कर ले जाता है। कुछ लोग तो उस पर अपना कर्म भी कर देते हैं, वाणी तो उनकी खैर लोग इतनी ढीली होती है कि जो बोला जा रहा है वो तोते की तरह वो वापस वो रिपीट कर देते हैं। सीख जाते हैं कि एक बार धोखा हो गया तो अगली बार थोड़ा ध्यान रखते हैं विश्वास करने से पहले। लेकिन एक आध्यात्म मार्गी के लिए शुरू से ही जानना बहुत आवश्यक है कि सत्य क्या है। लेकिन जब तक आप दर्शन में नहीं उतरते गहरे नहीं उतरते दर्शन में, तब तक आपको उसकी औपचारिक परिभाषा नहीं मिलेगी सत्य की। जो लोग दर्शन जानते हैं वो भी एक दो तरह के दर्शन जानते हैं, उनको जो बता दी जाती है उसमें परिभाषा, वो मान लेते हैं कि हाँ सत्य है। तो सत्य की परिभाषा को सत्य मानना भी ठीक नहीं है, आपको उसमें भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो मेरी अपनी परिभाषा है सत्य की, वो मैं आपके सामने रखूँगा, आपको पसंद आए तो उसको मान लीजिए, आपको लगे कि सत्य है, सत्य की परिभाषा सत्य है तो मान लीजिए, नहीं तो आपको अपनी परिभाषा बनानी पड़ेगी। मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि अपने खुद की सत्य की परिभाषा निकाल के लाए, ज्ञान की परिभाषा नहीं, आप उसको खुद का नहीं बना सकते हो, तो थोड़ा बहुत मौलिक हो गया। लेकिन सत्य जो है वो कोई भी अपना बना सकता, अपनी परिभाषा बना सकता है। तो मैंने अपनी बना रखी है, मैं आपको देता हूँ, हो सकता है काम आए, मुझे बहुत काम आती है। तो सत्य क्या है? सत्य एक अनुभवों का वर्गीकरण है। वर्गीकरण का मतलब अपने अनुभव ले लीजिए, उनको दो वर्गों में बांट लीजिए, एक है सत्य, एक है असत्य या मिथ्या। अभी अनुभव आपका प्रत्यक्ष अनुभव भी हो सकता है, जो आपके सामने हो इंद्रियों से, या जो मानसिक अनुभव है वो भी हो सकते हैं, और अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, जैसे अनुमान या पुस्तकें या गुरु के वचन या लोगों के वचन कहीं से सुने हुए या पढ़े हुए, जो कि अप्रत्यक्ष, अपरोक्ष की जगह परोक्ष। तो दोनों तरह के अनुभवों का आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सत्य है वो है अनुभवों का वर्गीकरण। जो आप कुछ अनुभव आप सत्य के वर्ग में डालना चाहेंगे और कुछ असत्य के। क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि आपको कुछ उस पर कार्य करना है, आपको कुछ उस पर कर्म करना है। यदि नहीं करना है, आपको उसे कुछ लेना देना नहीं है, तो जाने दो, किसको पढ़िए वो सत्य है झूठ है पता करने की, इतनी मेहनत कौन करे। लेकिन जैसे ही आपको उस पर कुछ कार्य करना रहता है, या आपको कुछ कर्म करना रहता है, या बोलना भी एक कर्म है, किसी को बताना रहता है दूसरे को, कि तो आपकी एक तरीके से जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सत्य है या असत्य है पता करे, कुछ थोड़ा सा प्रयास करे पता करने का, एक उसका वर्गीकरण करें। वर्गीकरण कैसे करें ये समस्या है। एक तरह का अनुभव सत्य है, एक तरह का अनुभव असत्य है, लेकिन वो मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ, लेकिन वो किस आधार पर कर रहा हूँ। कुछ लोग जो है एक मान्यता बना के चलते हैं कि जब तक मुझे पता नहीं चलता कि सत्य है, मैं उसको असत्य ही मानूंगा। ऐसे भी लोग हैं, तो वो आपकी पसंद है। वो कि आपकी मानसिकता है कि आप क्या माने क्या नहीं माने। लेकिन जो ज्ञान मार्ग पर है वो उसको सत्य और असत्य दोनों नहीं मानते हैं, और वो वर्गीकरण नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता, मुझे ज्ञान नहीं है सत्य या नहीं है, सत्य है या नहीं है। इससे आपका मार्ग खुला रहता है। एक बार आपने कह दिया मुँह से कि नहीं असत्य है, तो फिर वो मन अड़ जाता है, जहाँ अहंकार है वो बीच में आ जाता है कि मैंने एक बार कह दिया असत्य है तो मेरे लिए ये ठीक नहीं रहेगा कि मैं अपनी बात बदल लूँ, उससे मेरी मान हानि होगी, लोग क्या सोचेंगे। तो एक बार आप ऐसा मान लेते हैं कि जब तक मुझे नहीं पता चलता तब तक हर चीज़ असत्य है, तो वो एक तरह की बाधा बन जाती है, एक तरह की मानसिकता बन जाती है, जिससे पीछा छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो ज्ञान मार्ग पे होते हैं वो बीच में रहते हैं, जब तक उनको पूरा पक्का पता नहीं चलता क्या सत्य है क्या असत्य है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी सत्य ज्ञान की तरफ इशारा करता है। यदि वो सत्य निकलता है तो वो उस मनुष्य के ज्ञान की तरफ इशारा करता है। तो सत्य का पर्यायवाची ज्ञान भी है, कुछ लोग मानते हैं ऐसा। अज्ञान जो है मिथ्या का पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा इसमें गहरा जाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से सत्य अनुभवों का वर्गीकरण है। अभी किस आधार पर वर्गीकरण करें इस बारे में मतभेद हो सकते हैं। लोग अलग अलग आधार होते हैं कुछ चीज़ सत्य मानने के, कुछ नहीं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आधार है वर्गीकरण का वो स्वेच्छित होता है, वो उस व्यक्ति पर निर्भर होता है कि उसको क्या किस आधार पर वर्गीकरण करे वो अनुभवों का। व्यक्तिनिष्ठ होता है, और इसको हम सत्य के मानदंड कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड। तो तो आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य हुआ होगा कि सत्य इतनी ठोस वस्तु है, इतनी ठोस अवधारणा है, और मैं उसको स्वच्छित और व्यक्तिनिष्ठ बता रहा हूँ कि जिसके जो मन में आता है वो अपने हिसाब से वर्गीकरण कर लेता है सत्य का और असत्य का। तो ये बात जो है आपको काफ़ी आश्चर्यजनक लगेगी, आपको झूठ लगेगी, लेकिन आप खुद अनुभव कर सकते हैं इस चीज़ का, खुद ही देख सकते हैं ये बात कि सभी लोगों के मानदंड सत्य असत्य के वर्गीकरण के अलग अलग होते हैं, और वो उनके ज्ञान पर आधारित होते हैं, वो उनके अनुभव या प्रमाण पर आधारित होते हैं। तो जिसके पास अनुभव नहीं है, प्रमाण नहीं है, वो दूसरा कोई मानदंड लगा लेगा। आपको जान के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मैं तो समझता था कि सत्य थोड़ी भारी चीज़ है, जो सत्य होता है वो हमेशा सत्य होता है, और कोई भी कहे वो सत्य ही रहेगा, किसी और के कहने से असत्य नहीं होता। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है असत्य हैं, ये सारी आपकी अवधारणाएँ, आपकी मान्यताएँ जो सत्य के बारे में है वो अज्ञान है। सही क्या है, सत्य क्या है, सत्य का सत्य क्या है, सत्य की वास्तविकता, सत्य का यथार्थ क्या है, कि सत्य एक वर्गीकरण है जो स्वेच्छा से और व्यक्तिनिष्ठ तरीके से किया जाता है। सबका अलग अलग रहेगा क्योंकि सबके मानदंड विभिन्न रहेंगे। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारा मानदंड यही होना चाहिए जो मेरा है। कोई मानेगा क्या? नहीं मानेगा। मेरे मानदंड मेरे होंगे, आपके आपके होंगे, किसी और के कुछ और होंगे। ज़्यादातर झगड़ा इसी बात का है इस दुनिया में कि कौन किस बात को सच मानता है, ये आप अपने अनुभव से देख सकते हैं। ये झगड़ा नहीं कि कौन सी बात वास्तविक तरीके से सच है, ये सबको पता है या किसी को पता नहीं है। झगड़ा यही है कि कौन किस बात को सत्य मानता है, और वो इसीलिए है क्योंकि सबके मानदंड सत्य के वर्गीकरण करने के, अनुभवों के वर्गीकरण करने के विभिन्न हैं। किसी भी एक दो आदमी के एक जैसे नहीं होते मानदंड, कुछ कुछ मिलता जुलता रहेगा कभी कभी, लेकिन नहीं 100% कभी नहीं मिलेंगे। 800 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, 800 करोड़ तरीके के सत्य हैं। तो आपको विश्वास नहीं होगा इस बात पे, लेकिन ये मेरा अनुभव है, जो मेरा अनुभव है मैंने आपके सामने रखा, जो मुझे परिभाषा पसंद आई मैंने आपके सामने रखी सत्य की। मैंने एक चीज़ देखी है कि सत्य को आप पत्थर की लकीर मान लें, उसकी परिभाषा वो मान लें जो बस यही है, ये जो कहता है इस किताब में जो लिखा है वही सत्य की परिभाषा है, तो आपको नुकसान हो सकता है ज्ञान मार्ग पर। ये मेरा अनुभव है, इसलिए आप सलाह चाहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे सत्य कैसे पता करूं, तो मेरी यही सिफारिश है, यही सलाह है आपको कि इस फेर में मत पड़िए सत्य असत्य के। सब व्यक्तिनिष्ठ है, जो आदमी कह रहा है उसका ये व्यक्तिनिष्ठ अनुभव है, उसका अपना वर्गीकरण है। हो सकता है आप किसी काम का नहीं हो सकता है किसी और के लिए वो बिल्कुल उल्टा हो सकता है कि वो जो आप सत्य समझते हो किसी और के लिए असत्य हो। इसके बारे में बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसीलिए सत्य जो है इतनी मजबूत चीज नहीं है जो आप समझते थे। यदि कोई कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है वो सत्य है, हो सकता है सत्य हो, लेकिन आपके पास कोई तरीका नहीं होगा वो बताने का। तो व्यवहारिक रूप से हमें कभी कभी सत्य असत्य का वर्गीकरण करना पड़ता है, कभी कभी हमें कोई कर्म करने पड़ते हैं, कभी कुछ बोलना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, और वो हम कोशिश करते हैं कि सत्य के आधार पर करें, झूठ पर नहीं करें, क्योंकि बड़ी समस्या आ सकती है अगर यदि आपको मालूम नहीं है क्या चीज़ सत्य है क्या चीज़ नहीं है, तो नुकसान हो सकते हैं तरह तरह के। और आध्यात्म में एक ही तरह का नुकसान होता है, वो है अज्ञान। तो किसी ने बता दिया अभी ये चीज़ सत्य है और आपने मान लिया, क्योंकि सत्य शब्द बहुत भारी होता है ना, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके मन पे। कोई सत्य सामने लगा दे किसी चीज़ की, यही सत्य है आपके लिए, वो अज्ञान का कारण हो सकता है। एक बार मन में बैठ गई बात तो वो जाती नहीं है। आप देख लीजिए धार्मिक तरीके के लोगों को, या जो राजनीतिक तरीके के लोगों को, या ऐसे ही जो तरह तरह की मान्यता लेके बैठे हैं लोग, उनके मन में एक बार बैठ जाता है कह सकते हैं, तो मुश्किल होता है निकालना, और सिर्फ मृत्यु ही उस अवधारणा को निकाल पाती है। तो ये बड़ा नुकसान है एक आध्यात्म के शिष्य के लिए। तो मेरी यही सलाह रहेगी आपको कि इस चक्कर में ना पड़े सत्य असत्य के। जब कोई कहता है कि सत्य है तो वो उस अपने स्वेच्छित व्यक्तिनिष्ठ मानदंड के आधार पर कह रहा होता है। तो अब आप बड़े चक्कर में पड़ गए होंगे कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो ये बात सच मानता था, वो बात सच मानता था, इसकी बात सच मानता था, उसकी बात सच। तो घबराने की बात नहीं है, सत्य कभी कभी काम की चीज़ भी होता है, उपयोगी होता है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको मानदंडों के कुछ उदाहरण देता हूँ, कभी कभी वो काम आ जाते हैं। तो लोग किस तरह के मानदंड उपयोग में लाते हैं, उनका सत्यासत्य विभेद करने का क्या मानदंड होता है लोगों का, मेरी अपनी अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत होते हैं, हजारों होते हैं। तो पहला जो हम हमारी जो शिक्षा हुई है हम स्कूलों में, उसकी वजह से जो पुस्तक में लिखा है हमारे लिए वो सच हो जाता है हमेशा के लिए। यदि वो लिखा गया है, लिखे हुए शब्द का बहुत वजन होता है, आपने देखा होगा। यदि मैं कुछ आपको लिख के दूं तो वो भारी हो जाती है बात, वजनी हो जाती है। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ मुँह से, उसका कुछ उसका कुछ मूल्य नहीं है। आजकल के ज़माने में इंसान की जो मनुष्य के जो वचन है उसका कुछ मूल नहीं रहा है। झूठ बहुत बोलते हैं लोग, लिखते समय डरते हैं क्योंकि प्रमाण बन जाता है एक तरह का। शिक्षण संस्थाएं हैं ज़्यादातर पुस्तकों से शिक्षा देती हैं, और हमारी जो एक अवधारणा सी बन गई है, मतलब कूट कूट के भर दिया गया दिमाग में कि पुस्तक में जो लिखा है वो सत्य है। तो बहुत से लोग, आध्यात्मिक लोग भी पुस्तक में जो लिखा है उसको सच मान लेते हैं आँख बंद करके, अंधश्रद्धा से। जितनी पुरानी पुस्तक होगी या किसी बड़े आदमी ने लिखी होगी उसको तो वो मान ही लेते हैं, वो तो उस पर कुछ उस प्रश्न करने का उनको विचार भी नहीं आता। जो दूसरा उदाहरण काफ़ी लोगों ने बताया है कि समाज, सभी लोग कह रहे हैं वो बात तो वो सत्य मान ली जाती है। ज़्यादा लोग कह रहे हैं तो ज़्यादा सत्य होनी चाहिए। एक आदमी कह रहा है, कोई ध्यान नहीं देता उसकी बात पे। एक कह रहा हो तो लोग हंसते हैं कि क्या कह रहा है, उल्टी सीधी बात, देखो बाकी लोग क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो। तो ये उनका एक मानदंड होता है कि ज़्यादा लोग कह रहे हैं सच होगा। तीसरा, समाचार पत्र। बहुत लोगों का विश्वास हो गया है समाचार पत्रों में, जिसमें कि आपका टीवी भी आ जाएगा, आजकल इंटरनेट भी आ जाएगा, और ये सब तरह तरह के माध्यम जो हैं, सूचनाओं के माध्यम, वो आ जाएंगे। तो जब समाचार पत्र शुरू हुए थे तो वो ईमानदार लोग चलाते थे वो समाचार पत्र, उन पे लोगों का भरोसा होता था, विश्वास होता था। आजकल आप भरोसा नहीं कर सकते कि किसने क्या लिखा है समाचार पत्र पे। ज़्यादातर राजनीतिक होते हैं, उनको जो अपनी अपना जो ढिंडोरा पीटना होता है वो उसमें भरा होता है सारा। तो लेकिन क्योंकि हमारी अवधारणा बन गई है, हमारे संस्कार बन गए हैं कि समाचार पत्र में लिखा है सच होगा। अब मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ गलत होगी, नहीं, कहीं किसी दुर्घटना हुई है, कुछ हुआ है, बाढ़ आई है, तो वो सच होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर शब्द लिखा हुआ वहाँ सच हो। लेकिन कुछ लोगों की अवधारणा ये, मतलब ये मानदंड लोगों ने बना दिया गया है कि हाँ ये समाचार पत्र में आ गया है अब ये सच ही होगा, या टीवी में दिखा दिया गया है तो अभी सच होगा। तीसरे, माता पिता। क्योंकि बचपन में कोई और होता नहीं है ज्ञान देने के लिए, सिर्फ माता या पिता ही होते हैं, तो जो माता पिता कहते हैं वो हमारे लिए सत्य हो जाता है। बचपन में आप इतने भोले होते हैं कि आपको शक भी नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं है आपके पास ये शक करने का। माता पिता भी झूठ बोलेंगे, लेकिन हो माता पिता झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अज्ञान से भी निकल सकता है, कि जरूरी नहीं कि सारे माता पिता ज्ञानी हो इस दुनिया के, उल्टा है। ज़्यादातर जो माता पिता हैं, जो परिवार लोग के लोग हैं, बड़े लोग, वो अज्ञानी हैं। वो कुछ बातें आपको बताते हैं जो सही होती है, लेकिन हर बात सही नहीं होती माता पिता की। लेकिन आपका मानदंड हो जाता है बचपन से कि हाँ माता पिता सत्य बोलते हैं। फिर शिक्षक, क्योंकि स्कूल में शिक्षक झूठ नहीं बोल सकता किसी के लिए कल्पना करना भी मुश्किल है कि शिक्षक गलत बोलता हो, लेकिन जो आध्यात्म के मार्ग पर है वो जानते हैं कि शिक्षक और ज्ञानी दोनों में बहुत फर्क होता है, अंतर होता है। गुरु शिक्षक होता है लेकिन शिक्षक गुरु नहीं होता, जो है उनको सच, उनकी हर बात को सत्य मान लिया जाता है, क्योंकि भर दिया गया है मन में, दिमाग में हमारे बचपन से शिक्षक ने जो कहा है वो सत्य होगा। तो आप देखिए, आप कुछ लोग यदि बातें कर रहे हैं और उसमें से एक प्रोफेसर है, उसके नाम के आगे प्रोफेसर लिखा हुआ है, तो वो जो कहेगा लोग उस पर कभी शक नहीं करेंगे, उस पर उनका शंका नहीं होगी, उसको संशय नहीं होगा जो किसी ऐसे बड़े आदमी ने बोला है जिस बात को। तो ये जो है ठीक नहीं है एक आध्यात्म के शिष्य के लिए, इतने अंधश्रद्धा ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर शिक्षक जो है गलती बोलता होगा, लेकिन नहीं, उनको सारा ज्ञान नहीं होता, नहीं तो हम उनको गुरु कहते हैं। जो गुरु जी जो थे आपके शाला में, वो गुरु नहीं है जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो पाठशाला में जो सिखाया जाता है वो सब लोग सत्य मान लेते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है, खासतौर से हमारे देश में, क्योंकि अंग्रेज बना के चले गए हैं ये जो पाठ्यक्रम और सारा शिक्षण संस्थान, और हम अभी तक उसी पर चल रहे हैं। तो उन्होंने जो भी बताया था हमारी हमारे इतिहास और हमारी हमारी संस्कृति के बारे में, जो भी पढ़ाया गया था वो उन्होंने लिखा, जो भी पट्टी पढ़ाई वो हम उसको दोहराते आ रहे हैं। किसी भी भारतीय को मालूम नहीं है कि भारतीय संस्कृति क्या है और भारतीय इतिहास क्या है, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको तोड़ मरोड़ के जो है एक भारतीय लोगों के मन में हीनता की भावना डाल दी, क्योंकि उनको शासन करना था, तो अपने आप को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया कि हम ऐसे हैं, हम बड़े हैं और आप लोग ऐसे हो, तो वही हम पढ़ाते आ रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं यहाँ स्कूलों में, पाठशालाओं में? सब कुछ पश्चिमी है, कुछ भी भारतीय नहीं है उसमें। शुरू कर ले तो अंग्रेजी माध्यम जो है उसको अभी भी अच्छा समझा जाता है, हिंदी माध्यम गरीब लोगों के लिए, अंग्रेजी बड़े लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, सुसंस्कृत लोगों के लिए है। संस्कृत ने वो तो धार्मिक लोगों के लिए, पंडित लोग पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। तो अंग्रेजों ने जो नुकसान किया वो चला आ रहा है, किसी को मालूम नहीं है कि पाठशाला में क्या पढ़ाना चाहिए। उनके देश में जाके देखेंगे क्या वो भारतीय चीज़ें पढ़ा रहे हैं वहाँ पर? नहीं, वो अपना पढ़ा रहे हैं। तो ये एक मानदंड बन जाता है कि ये आदमी शिक्षित है, सच बोल रहा होगा। इसके बाद मित्र, या मित्रों की बात पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि संबंध होते हैं, हमेशा झूठ नहीं बोलते मित्र, लेकिन अज्ञान के कारण झूठ बोल, कुछ बातें झूठ हो सकती है उनकी, या फिर कोई व्यक्ति बड़ा सम्मानित है, जैसे हमारे देश में ये बहुत होता है कि बड़ा आदमी है, बहुत पैसा है, या फिर फिल्म स्टार है, तो उसने जो कहा वो सच ही होगा। नेता है तो वो तो पत्थर की लकीर हो जाता है, उसने कहा तो किसी ने कह दिया कि वो वहाँ पे मस्जिद है, उसको तोड़ के हमें मंदिर बनाना चाहिए क्योंकि वहाँ मंदिर था, तो उसकी बात पे किसी को भी शंका नहीं होती। हाँ, नेता ने कहा है तो अब करना ही पड़ेगा, और इस तरह से वो आम जनता का लाभ उठाते हैं, उनको गुमराह करते हैं और अपने काम निकालते हैं। तो सम्मानित जो व्यक्ति हैं समाज में, उनकी बातों को आँख बंद करके सच मान लिया जाता है। यदि कोई पैसे वाला हो तो उसकी बात पर ज़्यादा लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, गरीब आदमी ने कुछ पैसा चाहिए होगा इसलिए बोल रहा होगा, ऐसा मानते हैं। और सुशिक्षित, और भी आपको कितने उदाहरण मिल जाएंगे ऐसे, लोग के कपड़े देखकर लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सच बोल रहा है या नहीं। फटे पुराने कपड़े हैं, कहाँ से गांव से आया हुआ दिखता है, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता, कितना भी सच बोल रहा हो। लेकिन सूट बूट में है, दिखता है कि पढ़ा लिखा है, कहीं का अंग्रेज दिखता है, तो सच बोल रहा होगा। तो ऐसे उल्टे सीधे मानदंड इस समाज में हैं, और इन मानदंडों के आधार पर लोग सत्य असत्य का वर्गीकरण करते हैं। उनकी कोई परिभाषा है ही नहीं सत्य असत्य की, पहली बात। उस हिसाब से वो कर्म करते हैं, उस हिसाब से उनके कार्य होते हैं, और आप नतीजा देख लीजिए क्या है आपके सामने, आपकी आंखों के सामने है। क्यों है ऐसी समाज में व्यवस्था हमारे, ये समाज क्यों इतना, ये संस्कृति इतनी क्यों गिर गई है? क्योंकि सत्य असत्य में लोगों को भेद पता नहीं है, उनको आता भी नहीं करना। तो हमें समाज से कुछ करना नहीं है, जो आध्यात्म के लोग हैं उनको आध्यात्म से काम है, तो हमारा ये काम नहीं है समाज को सुधारना, लेकिन हम समाज के अंग हैं, हम समाज में बड़े हुए हैं, तो खुद को सुधारना हमारा लक्ष्य है। तो ध्यान दीजिए इस बात पे, आपके मन में, आपके दिमाग में क्या भरा गया है, क्योंकि समाज में हम पैदा हुए हैं, तो उससे छूटना इतना आसान नहीं है। तो पहला तो आपको यही देखना पड़ेगा कि बाकी लोगों ने मेरे दिमाग में क्या भरा है, पहले तो वो मैं निकाल दूं, और मैं अपना एक मानदंड बनाऊं सत्य क्या है पता करने का, क्योंकि मेरे पास नहीं है कोई मानदंड। अच्छी बात यह है कि आप अपना मानदंड बना सकते हैं, आपको किसी और का मानदंड लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी नहीं। लेकिन ये ज़रूरी है कि दूसरों का मानदंड आप उसको ठोकर मार के निकाल दीजिए अपने दिमाग से। पहला ये काम ज़रूरी है। यदि आपको बहुत ही पसंद है किसी का मानदंड, नहीं मैं गुरु, ये मेरे गुरु है, ये मेरे माता पिता है, इन्होंने ये बताया है कि ऐसी ऐसी बातें सच होती हैं, तो आपकी इच्छा है, वो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है इतना, क्योंकि आपके अनुभव से आपको कभी ना कभी पता चल ही जाएगा क्या सत्य है क्या नहीं है। यदि आप अभी से मानदंड सही रखते हैं, उपयोगी मानदंड रखते हैं, तो थोड़ा सा समय बचेगा और कुछ नहीं। हो सकता है कि आपको सत्य के ज्ञान 10 साल बाद हो जाए अगर आपके मानदंड उल्टे सीधे हैं, तो 20 साल बाद हो सकता है, अगले जन्म में हो सकता है, 200-300 जन्मों के बाद भी हो सकता है, जल्दी किसको है यहाँ पर। लेकिन यदि आपके सत्य के मानदंड सही है, या आप जानते हैं कि सत्य असत्य जो है इतना पत्थर की लकीर नहीं है, तो आपका बहुत समय बचेगा, आप गड्ढे में गिरने से बचेंगे अज्ञान के। यही हमारा उद्देश्य है और कुछ नहीं। क्या उचित मानदंड है, अभी मैंने कहा कि तो व्यक्तिनिष्ठ होता है, तो मैं आपको अपने बता देता हूँ मेरे हिसाब से क्या उचित मानदंड है। जो अभी मैंने बताया वो सब अनुचित है मेरे हिसाब से। पुस्तकों पे मत भरोसा कीजिए, समाज पे नहीं, माता पिता पे नहीं, शिक्षकों पे नहीं, समाचार पत्र, टीवी, इंटरनेट, ये सब आपको पता नहीं वो क्या बोलते हैं, आपके पास कोई तरीका नहीं है जानने का। आपके सही मानदंड क्या होने चाहिए, तो यदि आपको पसंद हो तो आप मेरे हिसाब से क्या मानदंड है, मेरे क्या मानदंड है वो अपना सकते हैं, नहीं तो आप अपने बनाइए, क्योंकि ये तो सत्य है, ये तो व्यक्तिनिष्ठ है, स्वेच्छित है। तो पहली बात, यदि आपने समझ ली कि सत्य इतना कठोर नहीं होता, इतना ठोस चीज़ नहीं है, वहाँ उतना काफ़ी है आपके लिए, फिर आगे आपकी इच्छा है, आगे आप क्या मानदंड बनाना चाहे, नहीं बनाना चाहे, कोई बात नहीं। सत्य के उचित मानदंड मेरे हिसाब से है कि स्व अनुभव, अपना खुद का अनुभव। यदि कोई बात आपके अनुभव में है तो वो आपका सत्य है, और सिर्फ आपका सत्य है, किसी और का नहीं, उसे किसी और पे थोपने की जरूरत नहीं है, उनका सत्य उनका अनुभव होगा। ऐसा झगड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है कि मेरा अनुभव सही है, आपका अनुभव सही नहीं है, अनुभव अनुभव है, सत्य असत्य व्यक्तिनिष्ठ है। बहुत सी चीज़ें सत्य हो सकती है, लेकिन एक ही अनुभव से कई सत्य निकल सकते हैं, कई असत्य निकल सकते हैं। दूसरा मानदंड है कि सत्य तार्किक होना चाहिए, यानी कि तर्क पर सही उतरना चाहिए, वो तर्क संगत होना चाहिए। छोटे मोटे आपको नियम तर्क के मालूम होने चाहिए, इसके लिए तर्कशास्त्री को किताब पढ़ सकते हैं कि तर्क के क्या नियम होते हैं। जैसे कि यदि एक कथन है, उसको सत्य कहा गया है, तो उसका जो उल्टा है, उसका जो विरुद्ध है, वो सत्य नहीं होगा। यदि किसी ने कहा कि हाँ ये मैं ये कह रहा हूँ कोई बात, और उसकी उल्टी बात भी सच है, तो ये तर्कसंगत नहीं है। अगला मानदंड है कि इसकी पुनरावृत्ति संभव होनी चाहिए। यदि कोई चीज़ सत्य है तो हर बार सत्य होगी, ऐसा नहीं कि आज सत्य है और कल नहीं है, ऐसा नहीं होगा कभी। जो सत्य वचन है, सत्य जो वर्गीकरण आपने कर रखा है, वो बार बार बदलेगा नहीं। अगर वो बदल रहा है बार बार, कभी सत्य कभी असत्य, उसकी पुनरावृत्ति नहीं संभव है, तो वो सत्य नहीं है। या एक ही बार होता है वो और फिर नहीं होता, वो आपका अनुभव भी है लेकिन बार बार नहीं होता, तो वो असत्य है। चौथा मानदंड है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का अर्थ है कि देश काल पर निर्भर नहीं है। अगर कोई बात यहाँ सत्य है तो वह आपके शहर में भी सत्य होगी, वो किसी दूसरे देश में भी सत्य होगी, कहीं भी आप इस विश्व में चले जाएं वो सत्य होगी। यदि मैं कहता हूँ कि चांद गोल है तो वो हर जगह गोल रहेगा, लेकिन कभी ये हर चीज़ पर लागू नहीं होगा, ये अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि समय के साथ नहीं बदलता। जो चीज़ बदलती है वो असत्य है, कभी सत्य कभी असत्य, कभी है कभी नहीं है, कभी वास्तविक है कभी अवास्तविक है, इसका मतलब वो असत्य है, वो मिथ्या है। स्वत प्रमाण यानी कि सेल्फ एविडेंट, यानी कि जो आपके सामने है उसका प्रमाण आपके सामने होता है, वो खुद को सिद्ध करती है वो बात, तो वो सत्य होती है। ये जो है कठोर मानदंड है, आप देख रहे होंगे कि बहुत कम चीज़ें सत्य बचेंगी, अब ज़्यादातर चीज़ें असत्य हो जाएंगी अगर ये मानदंड अपनाए जाएँ तो। तो इसके अतिरिक्त जो मानदंड हैं जो व्यवहारिक रूप से आपको अपनाने पड़ेंगे, आप उस पर इतना ज़्यादा कठोर नहीं हो सकते, वो है अवैतिक, यानी कि कुछ चीज़ें जो है मेरे अनुभव में भी है, आपके अनुभव में भी है। यदि हम ये मान लेते हैं कि हाँ जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो आप भी अनुभव कर रहे हैं, तो वो एक तरह का अवैतिक अनुभव हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव हो जाता है, उसको हम सत्य मान सकते हैं। यदि मेरे सामने पानी का गिलास रखा है और मुझे वो दिखाई देता है और आपको भी दिखाई देता है ये पानी का गिलास है, तो भले ही मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि आपका क्या अनुभव है, मुझे ये मानना पड़ेगा कि हाँ आप सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा भी अनुभव वही है। अवैतिक अनुभव जो है वो आपको कभी कभी मानने पड़ते हैं कि सत्य है। और गुरु वचन थोड़ी सी व्यक्तिनिष्ठ बात है, आपको गुरु पर कितना भरोसा है, कितनी निष्ठा है, कितनी श्रद्धा है, उस पर निर्भर करता है कि गुरु की बातें जो है आप सत्य मानते हैं या नहीं। लेकिन यदि आपकी श्रद्धा है गुरु पे, आप हर बात गुरु की सच निकल रही है, तो जो अगली बात है वो भी सत्य निकलेगी। इसलिए आप गुरु वचन को जो है सत्य के मानदंड में डाल दिया गया है। लेकिन गुरु क्या है वो पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभव है आपका, हर कोई गुरु नहीं होता। उसके बाद विज्ञान में कुछ मानदंड डाल दिए गए, जैसे गणितीय, अगर गणित कह रहा है कि ये सच है तो वो सत्य निकलता है, आप अनुभव कर सकते हैं। तो दो और दो चार अगर बता रहा है उस सूत्र, तो आप देखेंगे कि दो और दो चार होता ही है, अनुभव उसका सही निकलेगा। तो विज्ञान में ये उसको गणित को जो है सत्य का मानदंड माना जाता है, काफ़ी उपयोगी भी है। और दूसरा है प्रायोगिक, जो विज्ञान में माना जाता है, आपको बता दिया जाता है कि हाँ आप ऐसा अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा उसका प्रभाव मिलेगा, आप इस तरह से प्रयोग करेंगे तो आपको इस तरीके से उसका उत्तर मिलेगा, जो चीज़ देखने को मिलेगी इस तरह का अनुभव आएगा। तो प्रयोग को भी सत्य का मानदंड मान लिया गया है। तो ये जो आप देख रहे होंगे काफ़ी कठोर तरीके के मानदंड हैं, मैं इन मानदंडों पे चलता हूँ। तो कभी कभी मैं कहता हूँ कि ये बात सत्य है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इन मानदंडों पर आधार बनाया है इनको वर्गीकरण का। इन मानदंडों पे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा विचार करें, विचार करके देखें कि आपके हिसाब से कहीं गलत तो नहीं है मानदंड, कहीं मैं मुझसे भूल तो नहीं हो गई कि मैंने आपको गलत मानदंड बता दिया, क्योंकि अगर हो गई तो फिर आप फंस सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है, आपका समय नष्ट हो सकता है, नुकसान क्या होगा इसमें लेकिन क्योंकि आध्यात्म मार्ग पर है आपको उपयोग करने हैं, व्यवहारिक समाज में आपको जो करना है करें, किसी को क्या पड़ी है, किसी को क्या करना है कि आप क्या सच मानते हैं क्या नहीं मानते। लेकिन जब आध्यात्म की बात आती है, जब ज्ञान की बात आती है, तो आपको उचित मानदंड उपयोग में लाने हैं, नहीं तो आपका ज्ञान दूसरों के लिए अज्ञान हो जाएगा। यदि आप कहेंगे कि ये इस किताब में लिखा है, किसने लिखी किताब हमें मालूम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सत्य है, तो आपकी बात का कोई वजन नहीं रहेगा, क्योंकि वो इन मानदंडों पे नहीं आ रही है। आप देखिए इसमें कहीं लिखा नहीं है पुस्तक को जो है ज्ञान का प्रमाण माना गया है, लेकिन किसका ज्ञान, आपका अपना ज्ञान, व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान, आपने जो पुस्तक में लिखा है अगर आपको ज्ञान हो जाता है कुछ, दूसरों पे कुछ उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप कितना भी कहें कि वो सत्य है, दूसरे वही मानेंगे जो उनका मानना है, जो उनके मानदंड है। यदि मानदंड मिलते हैं मेरे और आपके, तो कुछ संचार हो सकता है, कुछ जो मैं कह रहा हूँ वो आप सुन सकते हैं, आप जो कह रहे हैं वो मैं सुन सकता हूँ, उसका उपयोग है उस बात का, उस बातचीत जो हो रही है उसका कुछ उपयोग है, इसलिए मैंने उसको सत्य की परिभाषा में डाल दिया है कि अगर सत्य का संचार हो रहा है तो वो उपयोगी है। अगर अनुभव मिल रहे हैं, अगर मानदंड मिल रहे हैं, तो वो बोलना, वो वचन उपयोगी है, नहीं तो वो समय नष्ट करना है, वो बेवकूफ़ी है। अब ये अपना सकते हैं मानदंड, यदि आप अभी चलना शुरू किया है अपने अध्यात्म मार्ग पे, तो मेरी सलाह रहेगी कि इनको मान लीजिए, बाद में आप भले इसको उनको उठा के फेंक दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कुछ उपयोग नहीं है, क्योंकि स्वैच्छिक है, व्यक्तिनिष्ठ है सत्य, सत्य के मानदंड, इनका वर्गीकरण व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्तिपरक है। लेकिन यदि आपको बिल्कुल भी आप चकरा गए कि अब मेरा मानदंड, मुझे मालूम नहीं है क्या मानदंड होना चाहिए, आपने तो सारे के सारे नष्ट कर दिए मेरे मानदंड तो ये अपना लीजिए, इनमें से कुछ ले लीजिए जो आपको काफी मजबूत लगते हो।
आप सुन रहे थे बोधि वार्ता तरुण प्रधान के साथ, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस श्रृंखला के अगले भाग में। नमस्कार।